नमस्कार भारत, तारीख 19 दिसंबर, दिन मंगलवार, मैं हूं आदर्श राठौर। गुजरात में लगातार छठी बार बीजेपी की जीत के बाद गरजे प्रधानमंत्री मोदी। वहीं कांग्रेस ने कहा, हमने जीता गुजरात का दिल।
इतनी ताकतें लगी हुई थी कि एक बार गुजरात में गिरा दो।
हम मोर्चा हारे हैं पर हम जंग जरूर जीते हैं।
हिमाचल प्रदेश में बड़ी कामयाबी के बावजूद बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और प्रदेश अध्यक्ष को देखना पड़ा हार का मुंह। क्या रही वजह?
मोदी जी की लहर होती तो फिर वो दो चार जगह ना होती, फिर वो तमाम जगहों पर रहती। ऐसी क्या लहर जिसमें आपका प्रदेश अध्यक्ष भी चला गया और चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हार जाता है।
चलेंगे गुजरात के अहमदाबाद, जहां से कार्यक्रम में शामिल होंगे वरिष्ठ पत्रकार अजय उमट। लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, मोहम्मद शाहिद से। गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के आए नतीजों में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। गुजरात की 182 सीटों में से बीजेपी ने 99 और कांग्रेस ने 77 सीटें जीती हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों में से बीजेपी के खाते में 44 और कांग्रेस के खाते में 21 सीटें आई हैं। अमेरिका के वाशिंगटन में एक तेज रूट पर उद्घाटन के बाद सिएटल से पोर्टलैंड जा रही एक ट्रेन पटरी से उतर गई और उसके कई डिब्बे हाईवे पर गिर गए। स्थानीय अफसरों ने बताया है कि सिएटल के नज़दीक हुए इस हादसे में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं 70 से अधिक लोगों को अस्पताल ले जाया गया है। यह हादसा घुमावदार पटरियों पर हुआ, जहां पहले केवल मालगाड़ियां चला करती थीं। इसके बाद अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर कहा है कि यह दिखाता है कि अमरीका के मूलभूत ढांचे के विस्तार की उनकी योजना को मंजूरी देने की कितनी आवश्यकता है।
Let me begin by expressing our deepest sympathies and most heartfelt prayers.
मैं ये कहते हुए शुरू करता हूँ कि वाशिंगटन में ट्रेन हादसे के पीड़ितों के साथ हमारी गहरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं हैं। हम स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं और स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग कर रहे हैं। और अब एक और बड़ा कारण है कि हमें तुरंत अमेरिका के बुनियादी ढांचे को ठीक करना शुरू कर देना चाहिए। ये थे अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि लीबिया में सहायता का इंतजार कर रहे 36,000 प्रवासी बच्चे हैं और उनमें से 14,000 से अधिक बच्चे बिना किसी वयस्क के साथ हैं। ये भी माना जाता है कि कम से कम 4,000 युवा लीबिया से यूरोप जाने के लिए समुद्र पार करने के दौरान मारे गए हैं। साथ ही कई लोगों ने दास्ता दुर्व्यवहार का सामना भी किया है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रभाव, धन और मूल्यों के मामले में चीन और रूस को अमरीका का प्रतिद्वंद्वी बताया है। देश की नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति पेश करते हुए ट्रंप ने कहा कि सशक्त सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक प्रतियोगिता पूरी दुनिया में चल रही है। उन्होंने कहा कि अमरीका हिंसा और बुराई फैलाने वाले आतंकी संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्कों का सामना कर रहा है। ट्रंप की रणनीति में मैक्सिकन सीमा पर दीवार बनाना, आवर्जन नियम सख्त करना और वीजा लॉटरी कार्यक्रम समाप्त करने जैसी योजनाएं शामिल हैं। यरूशलम को इसराइल की राजधानी की मान्यता देने के अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के खिलाफ सुरक्षा परिषद के प्रस्तावित मसौदे पर अमरीका ने वीटो कर दिया है। ब्रिटेन और फ्रांस समेत परिषद के दूसरे 14 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया। संयुक्त राष्ट्र में अमरीकी राजदूत निकी हैली ने कहा है कि जो भी हुआ वो एक अपमान की तरह है जिसे भुलाया नहीं जाएगा। फलस्तीनी और दूसरे समर्थकों ने उम्मीद जताई है कि पूर्वी यरूशलम एक दिन जरूर फलस्तीनी राष्ट्र की राजधानी बनेगा।
The exercise of the veto is not something the United States does often.
वीटो ऐसा अभ्यास है जिसे अमेरिका अक्सर नहीं करता है। हमने 6 सालों से अधिक समय में ऐसा नहीं किया है। हम इसे खुशी से नहीं करते हैं और हम इसे अनिच्छा से भी नहीं करते हैं। तथ्य यह है कि इस वीटो का प्रयोग अमेरिका की संप्रभुता की रक्षा और मध्य पूर्व में अमेरिका की भूमिका की रक्षा में किया गया है। ये थे अमरीकी राजदूत निकी हैली के शब्द। सिरिल रामापोसा दक्षिण अफ्रीका की सत्तारूढ़ ANC पार्टी के नए अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। सिरिल एक अमीर व्यवसायी और ट्रेड यूनियन के पूर्व नेता हैं। देर रात तक चले मतदान के बाद 65 साल के रामापोसा ने करीबी मुकाबले में पूर्व मंत्री कोसाजाना लामिनी जुमा को हरा दिया। रामापोसा को 2,440 वोट और लामिनी जुमा को 179 वोट मिले थे। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और फेसबुक पर भी लाइव सुन रहे हैं। मेरा नाम है आदर्श राठौर। कल गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए और दोनों राज्यों में बीजेपी को सरकार बनाने में कामयाबी मिली। हालांकि गुजरात में पिछली बार के मुकाबले सीटों का अंतर घटा है, मगर 22 साल से सत्तारूढ़ भाजपा अपना किला बचाने में कामयाब रही। गुजरात की 182 सीटों वाली विधानसभा में भाजपा ने 99 सीटें जीती और कांग्रेस को 77 सीटें मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नतीजे आने के बाद एक जोशीला भाषण दिया, वहीं राहुल गांधी ने ट्वीट करके दोनों राज्यों की नई सरकारों को बधाई दी। सुनिए कुलदीप मिश्र की रिपोर्ट।
भाजपा शासित प्रदेशों को भगवा और कांग्रेस शासित प्रदेशों को नीले रंग में रंग दें तो भारत का नक्शा 18 दिसंबर की शाम से काफी बदल गया है। उत्तर और मध्य भारत में पंजाब इकलौता सूबा है जहां कांग्रेस सरकार बची हुई है। चुनाव प्रचार के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा में जो आक्रामकता थी वह चुनावी फतेह के बाद भी दिखी। उन्होंने जिक्र किया कि विपक्ष किस शिद्दत से उन्हें हारता हुआ देखना चाहता था।
कांग्रेस पार्टी तो सिर्फ दिखती थी कि मैदान में है, लेकिन उसके सिवाय इतनी ताकतें लगी हुई थी कि एक बार गुजरात में गिरा दो। कैसे कैसे षड्यंत्र किए गए, कैसी कैसी चालाकियां की गई।
शाम तक इंतजार होता रहा कि नए नवेले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी चुनावों पर प्रतिक्रिया देने आएंगे, लेकिन वे नहीं आए। आए तो गुजरात प्रभारी अशोक गहलोत और राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला। उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाए कि आयोग ने भाजपा को अतिरिक्त अवसर दिए और प्रधानमंत्री ने प्रचार का स्तर गिराया। अशोक गहलोत ने कहा,
तो उन्होंने खाली टीका टिप्पणी तक सीमित रखा अपने आप को। कभी वो सी प्लेन उतार रहे हैं वहाँ पर जिसके कोई मायने नहीं थे, कभी वो भावात्मक बात करते हैं कि मैं गुजरात का बेटा हूँ और मेरी बेइज्जती कर रहे लोग बाहर से आकर के, ये कोई चुनाव का मुद्दा नहीं हो सकता।
हालांकि भाजपा की जितनी सीटें घटी और कांग्रेस की जितनी बढ़ी उसने भीतर ही भीतर कांग्रेस को थोड़ी राहत भी दी, लिहाजा कांग्रेस के नेता उतने निराश भी नहीं दिखे। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने खेल की दुनिया के एक लोकप्रिय शीर्षक की भाषा में अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। बोले कि मैच कोई भी जीते लेकिन दिल कांग्रेस ने जीता है।
राहुल गांधी जी को जो आशीर्वाद मिला, जिस प्रकार का अप्रत्याशित धनबल सत्ताबल और बाहुबल के बाद बावजूद समर्थन मिला, ये अपने आप में एक चौंकाने वाली बात थी। और इसलिए हम मोर्चा हारे हैं पर हम जंग जरूर जीते हैं और वो जंग है हमारे 6.5 करोड़ गुजरात के भाइयों और बहनों के दिल जीतने की जंग।
गुजरात में कांग्रेस ने भाजपा को जो टक्कर दी उसका श्रेय सत्ता विरोधी लहर और स्थानीय जातीय प्रतिरोध के साथ साथ कुछ जानकार राहुल गांधी की मेहनत को भी दे रहे हैं। उनकी ताजपोशी हो गई है लेकिन इस ताज में लगे कांटों का अंदाजा उन्हें भी होगा। वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव।
राहुल गांधी समझदार संजीदा व्यक्ति हैं लेकिन राजनीतिक रूप से एक तो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। 24/7 मोदी और अमित शाह की तरह पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी। 24/7 नहीं तो 18/7 18 घंटे तो करें, 16 घंटे तो करें। और बहुत ज्यादा आइडियलिज्म से काम नहीं चलेगा क्योंकि सामने जो प्रतिद्वंदी है वो सिर्फ जीतने के लिए खेलता है।
इन नतीजों की व्याख्या कई तरह से हो रही है। कुछ इसे भाजपा की काम चलाऊ जीत कह रहे हैं और कुछ का मानना है कि वास्तव में यह कांग्रेस के लिए झटका है कि वह 22 साल की सत्ता विरोधी लहर और जातियों के गुस्से का फायदा नहीं उठा पाई। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नतीजों से आह्लादित दिखे। सबको बधाई देने और शुक्रिया अदा करने के बाद अपने भाषण में उन्होंने आजादी की 75वीं वर्षगांठ के तौर पर अगले चुनावी साल यानी 2022 का जिक्र भी कर दिया।
हम विजय का विश्वास लेकर के, न्यू इंडिया के सपने को लेकर के 2022 आजादी के 75 साल होंगे। आजादी के लिए जिन महापुरुषों ने सपने देखे थे उन सपनों को पूरा करने के लिए हमें अपनी जिंदगी खपानी है।
हालांकि कांग्रेस में अरसे बाद ये भरोसा तो दिखा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में भी एक कांटे का चुनाव लड़ा जा सकता है, लेकिन फिलहाल भाजपा का विजय रथ बरकरार है और इस पंक्ति के साथ हौसले बुलंद है वाला मुहावरा भी नथी है। कुछ ही महीनों में कर्नाटक और उसके बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। देखते हैं कि गुजरात से जो बात निकली है वो कितनी दूर तक जाती है। कुलदीप मिश्र, BBC दिल्ली।
भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने गुजरात में 150 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया था, लेकिन पार्टी 99 सीटें ही जीत सकी। हमारे सहयोगी कुलदीप मिश्र ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल से बात की और सबसे पहले यही पूछा कि आपको अपेक्षित समर्थन क्यों नहीं मिला।
नहीं, मैं तो समझता हूँ कि हमें तो समर्थन काफी मिला है क्योंकि हमारा वोट परसेंटेज भी बढ़ा है। 22 साल हम वहाँ राज कर रहे थे, उसके बावजूद हम सत्ता के अंदर आए हैं। एंटी इनकम्बेंसी लोग कहते थे, लोग 5 साल भी अगर रहे गवर्नमेंट के अंदर तो लोग इस बात पे सोचते हैं कि दोबारा सत्ता में लौटेंगे नहीं लौटेंगे। यहाँ 22 साल के बाद लौट रहे हैं और तब लौट रहे हैं जब स्वयं मोदी जी मुख्यमंत्री नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि हमारा और हमारा दूसरी पार्टी के साथ 8% का डिफरेंस है, वो बहुत बड़ा डिफरेंस है जी। तो कांग्रेस ने इसको जात पात के ऊपर, तुष्टिकरण के ऊपर चुनाव को ले जाने की कोशिश की, किंतु मैं ये समझता हूँ उसके बाद परिणाम हमारे सब चीजों को देखते हुए अच्छे हैं।
लेकिन 150 का जो दावा था, लेकिन 100 भी पार नहीं कर पाए हैं सर, तो आपको लगा है कि बात के दौर में राहुल गांधी की टीम ने कुछ दमखम दिखाया गुजरात में?
नहीं नहीं, आप देखिए ना, सरकार मेरी बनी है, 8% वोट का मेरा फर्क है, 1.5% वोट मेरा ज्यादा हो गया, बढ़ गया है, तो मैं उसको ऐसा नहीं मानूंगा। ठीक है, मैं तो हमेशा ही लक्ष्य आगे रखूंगा ना, मैं लक्ष्य को कम क्यों रखूंगा जाके, मैं लक्ष्य हमेशा आगे रखूंगा ताकि मैं उसको वो हासिल करूं तो ज्यादा से ज्यादा मेरे पास सीटें आए।
ठीक है, गुजरात में नए मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ही होंगे या पार्टी किसी और चेहरे पर भी विचार कर सकती
है? आपको तो मालूम ही है कि पार्टी ने वहाँ ऑब्जर्वर भेजे हैं, उसके बाद ही तय होगा। भाजपा ने जो कहा था वो आपको भी मालूम है कि रूपाणी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, किंतु अभी ऑब्जर्वर भेजे हैं तो हाई कमांड तय करेगा इस पर।
सर, हिमाचल प्रदेश में अब क्या होने वाला है? आप वहां बड़ी जीत दर्ज की है आपने, लेकिन आपके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार प्रेम कुमार धूमल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती चुनाव हार गए हैं, तो कोई अनुभवी प्रशासक है पार्टी के पास जो
कई लोग हैं जो अनुभवी प्रशासक हो सकते हैं? वहां भी ऑब्जर्वर गए हैं, वो लोग तय करेंगे, फिर पार्टी हाई कमांड उस पर निर्णय करेगी।
जेपी नड्डा जी का नाम चल रहा है, उनके अलावा किसी कोई और नाम सामने नहीं आ रहा है?
नहीं नहीं, मेरे लिए नाम लेना ठीक नहीं है, किंतु 3-4 नाम ऐसे हैं जिनमें से कोई भी हो सकता है, वो पार्टी हाई कमांड तय करेगी
जी। और नए साल में मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक में चुनाव है, तो गुजरात और हिमाचल प्रदेश की इस जीत के निकट भविष्य में भाजपा के लिए क्या मायने आप देखते हैं?
देखो, मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ी बात क्या है, हर चुनाव एक इंडिपेंडेंट चुनाव है। दूसरी बात यह है, सबसे बड़ी बात, कि विपक्षी पार्टियों के पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई विजन नहीं है। तो जब उनके पास एजेंडा और विजन नहीं है और हमारे पास एजेंडा है, विकास है, उनके पास लीडरशिप भी नहीं है, हमारे पास लीडरशिप है, उनके पास स्टेट में लीडरशिप भी नहीं है, यही वैक्यूम उनका गुजरात के अंदर था। तो मैं ये समझता हूँ कि विन विन पोजिशन में है, क्योंकि हमारे पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो निरंतर काम कर रहे हैं 24 आवर्स बिना हॉलीडे के, जिनके पास विकास का एजेंडा है, जो कि हार्ड डिसीजन ले सकते हैं जिसके लिए देश को जरूरत है, और गवर्न कहना उसी को माना जाता है। अब सब्सिडीज देके तो गवर्नेंस नहीं की जा सकती। हमारे पास अमित शाह हैं जिनको संगठन की कला अच्छी आती है और वो सबको साथ लेके चल सकते हैं। दूसरी पार्टियों के पास कहाँ कुछ बचा हुआ है।
चुनाव के नतीजों पर प्रतिक्रिया दे रहे थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय गोयल। गुजरात में पाटीदार वोटों को एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा था। गुजरात में सियासी तौर पर महत्वपूर्ण पाटीदार समाज का एक बड़ा हिस्सा इस बार हार्दिक पटेल की अगुवाई में बीजेपी सरकार से नाराज बताया जा रहा था। हार्दिक ने चुनाव में कांग्रेस का समर्थन किया था, लेकिन कांग्रेस सरकार बनाने लायक सीटें नहीं ला पाई। ऐसे में उनकी राजनीति अब किस दिशा में बढ़ेगी? सर्वप्रिया सांगवान की रिपोर्ट।
नरेंद्र मोदी के गुजरात मॉडल पर बहस तो राष्ट्रीय स्तर पर हुई, लेकिन उसे चुनौती गुजरात से ही मिली। 24 साल के हार्दिक पटेल ने बिना चुनाव लड़े ही गुजरात विधानसभा चुनावों में ऐसी दावेदारी पेश की जिसे न सिर्फ मीडिया बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी नजरअंदाज करना मुश्किल हो गया। ये चुनाव कांग्रेस ने हार्दिक पटेल के संगठन पाटीदार अमानत आंदोलन समिति के समर्थन के साथ लड़ा था। दोनों के बीच शर्त थी कि कांग्रेस जीतने के बाद पटेलों को आरक्षण देगी, लेकिन जब एक बार फिर कांग्रेस की जगह विपक्ष में तय हो गई है तो अब हार्दिक पटेल की राजनीति का भविष्य क्या होगा। वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव कहते हैं
कि हार्दिक पटेल नरेंद्र मोदी जैसे बड़े नेता हैं ये मैं स्वीकार नहीं करता, हालांकि एक करिश्मा है उसमें, एक जो नेता बनाती है चीजें, और सौराष्ट्र वगैरह उन इलाकों में सीट्स भी अच्छी आई हैं कांग्रेस की जिसका सपोर्ट कर रहे थे हार्दिक पटेल। लेकिन हार्दिक पटेल अगर कांग्रेस जीतती तो शायद ज्यादा बड़े नेता बनते, लेकिन अब उनके सामने समस्या ये होगी कि अगर अब उनको बड़ा नेता बनना है तो वो एकला चालो रहे, उनको छोड़ना पड़ेगा, उनको कांग्रेस ज्वाइन करनी पड़ेगी, कोई दल बल होना चाहिए कोई, और जैसे ही वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे उनका कद हार्दिक पटेल का खुद ब खुद थोड़ा कम होगा। हालांकि कांग्रेस और हार्दिक पटेल मिलकर एक अच्छा सॉलिड पावरफुल शक्तिशाली कॉम्बिनेशन बनेंगे।
लेकिन गुजरात के वरिष्ठ पत्रकार आर के मिश्रा की राय जुदा है। उनका कहना है कि कांग्रेस अगर जीत जाती तो ये हार्दिक के लिए कम फायदेमंद होता।
कांग्रेस आने की वजह से उनके लिए उतना फायदेमंद नहीं होता, वो रूलिंग पार्टी का भाग बन जाते। हार्दिक पटेल का जो एजिटेशन है जोर पकड़ेगा। वो कांग्रेस में आते तो सब दुनिया भर की चीजें थी कि भाई ये करना है वो करना है, बीजेपी अगर पावर में वापस आती है तो उनका एजिटेशन जैसा था वैसे ही चलता रहेगा, तो उनकी फॉलोइंग में कितना डेंट हुआ है ये जब वो दोबारा मैदान में उतरेंगे इलेक्शन के बाद तब पता चलेगा।
गुजरात के कुछ पत्रकार मानते हैं कि नरेंद्र मोदी को आगे भी हार्दिक पटेल से कड़ी टक्कर मिलने वाली है। बीबीसी गुजराती सेवा के संपादक अंकुर जैन का कहना है कि हार्दिक अब राजस्थान, महाराष्ट्र और हरियाणा में भी माहौल बनाएंगे जहां समर्थन मूल्य और कर्ज माफी जैसे किसानों के मुद्दे मौजूद हैं। कमोबेश यही बात गुजरात के वरिष्ठ पत्रकार अजय उमठ भी कहते हैं।
क्लास से मास बनने जा रहा है एंड ही सेज कि मैं सिर्फ पटेलों की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, सभी कम्युनिटी की लड़ाई लड़ रहा हूँ। हार्दिक पटेल हालांकि चुनाव लड़ा नहीं, लेकिन उसके जितने सपोर्टर थे वो सब सपोर्टर चुनाव जीत गए, अल्पेश ठाकुर के सपोर्टर जीत गए हैं, और उसने कहा है कि मैं तो गुजरात में अपना एजिटेशन जो है वो चालू रखूंगा, तो वो तो ही इज गोइंग टू बिकम चीफ टॉर्मेंटर फॉर बीजेपी गवर्नमेंट।
हार्दिक पटेल ने गुजरात के रास्ते राष्ट्रीय स्तर पर अपना ब्रांड तो खड़ा कर लिया है, लेकिन अपनी विपक्षी राजनीति को वो क्या रूप देंगे ये आने वाले वक्त में सामने आएगा। राष्ट्रवाद के लिए उनका पुराना प्रेम भी है जिसने उनके लिए संभावनाओं की कुछ खिड़कियां खुली रखी हुई हैं। लेकिन सवाल यही है कि जीतने के बाद क्या भाजपा सरकार आसानी से ब्रांड हार्दिक के लिए लाल कालीन बिछने देगी। सर्वप्रिय सांगवान, बीबीसी दिल्ली।
अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां पर बीजेपी को 68 में से 44 सीटें मिली जबकि कांग्रेस 21 सीटों पर ही जीत हासिल कर सकी। दिलचस्प बात यह है कि हिमाचल में बीजेपी ने आसान जीत तो दर्ज की, लेकिन उसके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार प्रेम कुमार धूमल और प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती को हार का सामना करना पड़ा। हमारे सहयोगी कुलदीप मिश्र ने धर्मशाला में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार हेमंत शर्मा से संपर्क किया और पूछा कि हिमाचल के नतीजों में किस फैक्टर का सबसे ज्यादा असर रहा।
देखिए, हिमाचल प्रदेश में परंपरा एक चलती है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस आती है, तो एक तो ये उसी परंपरा की जीत है, वो परंपरा बदस्तूर कायम रही है और बीजेपी की इस बारी बारी थी और बीजेपी सत्ता में आई है। दूसरा देखिए, सीधा सा एक मसला ये है कि एक तो कोई बहुत बड़ी लहर नहीं थी जिससे हम कहें कि कोई प्रादेशिक लहर या कोई इस बड़े लीडरों ने कुछ इस तरह का वो किया हो कि हम बोले कि उसी के हिसाब से आप जीत दर्ज कर पाए, ऐसा कुछ नहीं था कहीं भी।
बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि प्रदेश में कोई लहर भाजपा के लिए नहीं थी, प्रदेश नेतृत्व के लिए नहीं थी, लेकिन जो केंद्र में नरेंद्र मोदी बैठे हैं उनके लिए भाजपा, उनके लिए इस बार हिमाचल प्रदेश में एक लहर थी।
नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मैं कहूं कि मोदी जी की यहाँ पे 7 जनसभाएं हुई है और जिस जिस जगहों पे जनसभा हुई वहां पे कई दिग्गज हारे भी हैं, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि इस तरह की लहर थी। असल में निहायत ही लोकल मसले, लोकल समीकरण जो हर हलके में अलग अलग थे, उन्हीं के हिसाब से ही हार जीत का फैसला हुआ है। अगर लहर होती, चाहे मोदी जी की लहर होती, तो फिर वो 2-4 जगह ना होती, फिर वो तमाम जगहों पर रहती। और ऐसी क्या लहर हुई कि जिसमें आपका प्रदेश अध्यक्ष भी चला गया और आप 7-8 दिन पहले आनंद फानन में एक नेता को चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट का प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं, वो भी हार जाता है। इवन कई हलकों में ऐसे लोग हारे हैं जहां मैं कहता हूं कि एक बात है कि बोलबानी भी, आपका व्यवहार बहुत अच्छा नहीं था, बेशक आपने काम भी किया,
बाकी चीजें ठीक है सर, भाजपा जीती, लेकिन इस बात को पचाना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि भाई सीएम उम्मीदवार हार गए, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हार गए, कोई अंदरूनी नापसंदगी थी उनके लिए भाजपा में ही, या ये सिर्फ एक संयोग है, या भाजपा के लिए कहें तो दुर्योग है।
मैं कहूंगा ये संयोग ही है। रही बात भाई धूमल कैसे हारे, मैं इसमें बिल्कुल डिफर करता हूँ बहुत सारे लोगों से। एक तो उनका वो अपना जिला है हमीरपुर, जहां से वहीं पे उनको सुजानपुर सीट पे लड़ने के लिए कहा गया था। पिछली बारी वो हमीरपुर सीट से लड़े थे, लेकिन जो सुजानपुर सीट है वो भी हमीरपुर से ही छूटी हुई सीट है, और पुरानी सीट उनकी, उस सीट का नाम था बमसन, वो डिलिमिटेशन के बाद बनी थी सुजानपुर। तो बमसन जो उनकी परंपरागत सीट है धूमल जी की, कई बार जहां से वो जीते हैं, वो सीट मिला के, उस सीट का मेजर पोर्शन मिला के, बड़ा पोर्शन मिला के सुजानपुर सीट बनी हुई थी। तो वो कोई नई नई थी उनके लिए सीट, पहली बात तो ये है। दूसरी बात कि अगर आप उतने दिग्गज हैं और उस तरह के हैं तो तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी जीतते हैं, लेकिन अपने आप में जो दो बारी चीफ मिनिस्टर रहे हो और उसी डिस्ट्रिक्ट में पॉलिटिक्स की हो, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें ऐसा रहा होगा।
और आखिरी चीज सर ये बताएं कि अब भाजपा के लिए मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवारों में कौन कौन हो सकते हैं?
चेहरों की बात करें तो मुझे लगता है फिर नड्डा जी सबसे आगे हैं, लेकिन वो बीच बीच में ऐसा भी कुछ बड़े नेताओं ने कहा भैया जो विधायक होगा उसी में से ही चीफ मिनिस्टर बनेगा। अगर ऐसी इस थ्योरी पे जाएंगे तो तब तो यहाँ पे जयराम है, पहले प्रदेशाध्यक्ष रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, और अगर कोई सरप्राइज देगी बीजेपी तो कोई ऐसा चेहरा आ जाएगा फिर, जो मुझे लगता है कि कोई सरप्राइज ही होगा।
वरिष्ठ पत्रकार हेमंत शर्मा बता रहे थे कि हिमाचल प्रदेश के चुनाव के नतीजों में कौन कौन से फैक्टर वहां पर हावी रहे। और अब वक्त है अखबारों की समीक्षा का। मोहम्मद शाहिद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अखबार लेकर। क्या कहते हैं अखबार शाहिद?
आदर्श, जाहिर है कि आज हर अखबार में गुजरात और हिमाचल प्रदेश चुनाव के नतीजे रहेंगे
जी।
तो इंडियन एक्सप्रेस हेडिंग देता है मोदी का दिसंबर वसंत, और टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है बीजेपी ने लगाया छक्का लेकिन गुजरात में 99 पर रुकी। हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है गुजरात अभी भी मोदी का है, साथ ही लिखता है कि करीबी लड़ाई में राहुल के लिए एक जीत, मतलब इसको एक राहुल की जीत भी माना जा रहा है गुजरात को लेकर
जी।
दैनिक भास्कर लिखता है कि इंदिरा गांधी के बाद मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल के पहले 3 सालों में 18 में से 12 चुनाव जिताए हैं, तो ये इन्होंने आंकड़ा लगाया है। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है कि हिमाचल में सीएम पद की दौड़ में जेपी नड्डा और जयराम आगे, और जनसत्ता ने इसी संबंध में लिखा है कि बीजेपी ने मुख्यमंत्रियों के चयन के लिए एक जो है पर्यवेक्षक मंडल बनाया है जिसमें हिमाचल में सीतारमन उसकी पर्यवेक्षक हैं और गुजरात में अरुण जेटली उस पर्यवेक्षक मंडल के सदस्य हैं
जी
जी। और एक बहुत दिलचस्प है मामला कि हिंदुस्तान टाइम्स पर खबर है कि गुजरात में 16 ऐसी सीटें हैं जिन पर जीत का अंतर 2000 से भी कम वोटों का है, और कईयों पर तो ये अंतर 200 से भी कम है, तो ये इन्होंने आंकड़ा लगाया है। इसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स की एक और खबर ये है कि हिमाचल प्रदेश के मुकाबले गुजरात में अधिक नोटा बटन का प्रयोग किया गया है। गुजरात में 5.5 लाख नोटा का प्रयोग हुआ है, वहीं हिमाचल में 33,000 वोट जो है वो नोटा के पक्ष में पड़े हैं
जी।
इसी के संबंध में ही नवभारत टाइम्स आगे लिखता है कि 2018 में 8 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने, लेकिन कर्नाटक पर सबसे अधिक फोकस रहेगा।
शुक्रिया शायद, यानी कि सारे अखबार जो है अखबारों जो कि मतलब चुनाव के नतीजों से भरे हैं। अब सीधे हम अहमदाबाद चलते हैं जहां पर मौजूद हैं बीबीसी हिंदी सेवा के रेडियो संपादक राजेश जोशी, उनके साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय उमट जी। राजेश जी,
आदर्श राठौर बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और दोस्तों जो हमें सुन रहे हैं अहमदाबाद में हम लोग हैं, और आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ नव गुजरात समय अखबार के अजय उम्मट, सुबह सुबह हमने आपको तकलीफ दी, तो मैं जब अखबारों की समीक्षा चल रही थी मैं आपसे यही सवाल करना चाहता हूं कि आपके अपने अखबार में आपने क्या लिखा, नव गुजरात समय में क्या लिखा है?
हमने लिखा है कि गुजरात में विकास आला बट गेला, जो एक कहावत थी कि गढ़ आला सी गेला, तो यहाँ गुजरात में विकास की जीत तो हुई है लेकिन वो वट नहीं है, दमखम के साथ भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती है।
हाँ।
जो पार्टी 150 सीट जीतने का दावा करती थी उसको 2 डिजिट में सिमट जाना पड़ा है, तो ये नर्वस 90 है और कांग्रेस के लिए इंस्पिरेशनल 80 है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है 176 सीट्स पर चुनाव लड़ रही थी और बाकी जो 6 सीट्स जो है उन्होंने जिग्नेश मेवानी और भारतीय ट्राइबल पार्टी के लिए छोड़ दी थी, जिसमें से 3 लोग और चुनाव जीत के आए हैं
जी।
तो कांग्रेस 80 के ऊपर निकल गई है, सो
लेकिन ये जो हाँ ये जो कांग्रेस की बढ़त एक तरह से कहें पिछली बार के मुकाबले, क्या ये बीजेपी के लिए, प्रधानमंत्री मोदी के लिए वेकअप कॉल नहीं है? और अगर वेकअप कॉल है और जिस तरह की राजनीति प्रधानमंत्री करते हैं, तो क्या कांग्रेस को यहीं पर रोकने की पूरी कोशिश नहीं करेंगे?
नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगाई थी, गुजरात में कारपेट बॉम्बिंग कर दिया था। कांग्रेस से सिर्फ स्टार प्रचारक राहुल गांधी थे, तो उसके सामने नरेंद्र मोदी, अमित भाई और साथ में कैबिनेट के 32 जितने सीनियर सहयोगी, चाहे वो स्मृति ईरानी हो या अरुण जेटली हो,
सब लोग आए थे।
32 कैबिनेट मिनिस्टर और 12 चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी के आए थे, क्योंकि वो गुजरात किसी भी कीमत पे नहीं हारना चाहते थे। इस बार गुजरात में काफी एंटी इनकम्बेंसी थी, लोगों में काफी नाराजगी थी, असंतोष था, नोटबंदी और जीएसटी को लेकर
नहीं कर पाई शायद, क्योंकि जो जिस आंकड़े पर रुक गई है उससे आगे जाने की उम्मीद बहुत सारे लोग कर रहे थे। एक सवाल मैं ये करना चाहता हूं कि बीजेपी सरकार बना रही है, प्रधानमंत्री ने गुजरात का बेटा वाला भी अपनी बात कही थी, इसके बावजूद उनके अपने गांव में, अपने गृह नगर में,
वडनगर में
वहां बीजेपी हारी है, एक दो में से एक विधानसभा में।
देखिए, गुजरात में जो हार्दिक पटेल का जो एक अनामत आंदोलन जो चल रहा था, उसका एपिसेंटर जो है वो विसनगर था, जो वडनगर से 20-22 किलोमीटर दूर है, और ये वडनगर जो है ऊंझा कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। तो स्वाभाविक है कि वहां से भारतीय जनता पार्टी ने जो पुराने जोगी जो थे, नारायण भाई लल्लू भाई पटेल जो ऊंझा एपीएमसी के चेयरमैन थे, उनको टिकट दी थी, लेकिन उनके सामने व्यक्तिगत नाराजगी भी काफी थी, एक एंटी इनकम्बेंट थी।
मोदी की अपील वहां नहीं चली, गुजरात का बेटा वाली अपील।
सर, मोदी की अपील गुजरात में कई जगह नहीं चली है, जैसे जस्तन में भी भारतीय जनता पार्टी हार गई है, मोरबी में भी भारतीय जनता पार्टी हार गई है। तो मोदी जी ने यहां 36 पब्लिक मीटिंग की थी, उसमें से काफी प्लेसेस ऐसी है जहां भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, और इस बार कोई लहर नहीं थी, मोदी लहर नहीं थी, जो 2007 और 2012 में देखने को मिली।
अब आगे की बात करें, ये जो विधानसभा है जहां कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष के तौर पर आएगी, वहां बैलेंस ऑफ पावर किस तरह को आप कैसे, क्योंकि आप विधानसभा कवर करते हैं, किस तरह की देखते हैं आप दोनों के बीच में छींटाकशी या रस्साकशी कहें उसे?
ठीक, इस बार जो भी चीफ मिनिस्टर बनेगा भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उसके पास काफी चैलेंजेस होंगे। एक तो हार्दिक पटेल है, वो एक ऐसा व्यक्तित्व है जो एजिटेशनल मोड में है। कल भी उसने कहा था कि मेरा आंदोलन जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार के सामने चलता रहेगा।
अभी 24 साल के ही है,
अभी 23-24 साल के हैं। उन्होंने कहा है कि वो फार्मर के लिए एजिटेशन करेंगे, अब वो पब्लिक लाइफ में आना चाहते हैं, इसलिए अब उन्होंने अनामत आंदोलन की बात छोड़ के उन्होंने डायमंड इंडस्ट्री के इश्यूज की बात की है। उनका कहना है कि गुजरात का ग्रोथ जो है वो जॉबलेस ग्रोथ है, गुजरात इज ए क्लासिक क्रॉनिक कैपिटलिज्म, तो वो काफी भाजपा सरकार के लिए चैलेंजिंग करते रहे।
और जिग्नेश मेवानी जो आंदोलनकारी हैं और एक तरह से लेफ्ट ऑफ सेंटर उनको कह सकते हैं, उनकी प्रेजेंस विधानसभा में, उससे क्या
उनकी प्रेजेंस जो है भारतीय जनता पार्टी को काफी खलेगी, क्योंकि वो एक आंदोलनकारी ऐसे नेता है जो गुजरात के कन्हैया कुमार बन सकते हैं। वो भी दलितों के इश्यूज उठाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी को काफी चैलेंजिंग साबित होंगे विधानसभा में।
बस चलते चलते एक छोटा सा आप हमें वो बताएं कि गुजरात के जो ये नतीजे आए, अब जो कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं और भारत के दूसरे राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, वहां बीजेपी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए क्या एक और मेहनत करने की एक गुंजाइश हो गई है?
डेफिनेटली, क्योंकि अगर गुजरात मॉडल अगर आपको फेल होता हुआ नजर आ रहा है, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में काफी चैलेंज आएगी।
बहुत बहुत धन्यवाद अजय उमट, ये क्विक टिप्पणी आपकी थी। वापस आदर्श राठौर, मैं आपके पास आता हूं, शुक्रिया।
जी राजेश, धन्यवाद। इससे पहले कि विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के आए नतीजों में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। गुजरात की 182 सीटों में से बीजेपी ने 99 और कांग्रेस ने 77 सीटें जीती हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों में से बीजेपी के खाते में 44 और कांग्रेस के खाते में 21 सीटें आई हैं। अमेरिका के वाशिंगटन में एक तेज रूट पर उद्घाटन के बाद सिएटल से पोर्टलैंड जा रही एक ट्रेन पटरी से उतर गई और उसके कई डिब्बे हाईवे पर गिर गए। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि लीबिया में सहायता का इंतजार कर रहे 36,000 प्रवासी बच्चे हैं और उनमें से 14,000 से अधिक बच्चे बिना किसी वयस्क शख्स के साथ हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रभाव, धन और मूल्यों के मामले में चीन और रूस को अमरीका का प्रतिद्वंद्वी बताया है। यरूशलम को इसराइल की राजधानी की मान्यता देने के अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के खिलाफ सुरक्षा परिषद के प्रस्तावित मसौदे पर अमरीका ने वीटो कर दिया है। सिरिल रामापोसा दक्षिण अफ्रीका की सत्तारूढ़ ANC पार्टी के नए अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। सिरिल एक अमीर व्यवसायी और ट्रेड यूनियन के पूर्व नेता हैं। देर रात तक चले मतदान के बाद 65 साल के रामापोसा ने करीबी मुकाबले में पूर्व मंत्री कोसाजाना लामिनी जुमा को हरा दिया।
बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में इतना ही। आज स्टूडियो संभाला अजीत सारथी ने। शाम 7:30 बजे दिन भर कार्यक्रम के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक आदर्श राठौर को सभी सहयोगियों के साथ दें इजाजत। नमस्कार।